नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो की इस नई कड़ी में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज के एपिसोड में डिस्कोर्स, मन ही पूजा, मन ही धूप वॉल्यूम नंबर 8 से लिया गया है। आज ओशो हमें सत्संग और धर्म के मायने बता रहे हैं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक डांसिंग नंबर के साथ। लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो।
Yes. पहला प्रश्न, भगवान सत्संग क्या है, मैं कैसे करूं सत्संग, आपके संग, ताकि इस बुझे दिए को भी लौ लगे। अशोक सत्यार्थी, यह भी खूब रही। सत्संग में बैठे हो और पूछते हो सत्संग क्या है, कबीर ने बहुत से अचंभों की बात कही है, उनमें एक अचंभा ये भी कहा है कि मछली सागर में है और प्यासी है। निश्चित ही सागर में मछली जल के लिए प्यासी नहीं होगी, मछलियां इतनी ना समझ नहीं। लेकिन एक और प्यास होगी, एक और जिज्ञासा होगी जानने की, यह सागर क्या है। मछली पूछती होगी अपने से औरों से, क्या है सागर, कहाँ है सागर, कैसे हुआ जाता है सागर में, और सागर में ही जन्मी है, सागर में ही जी है, सागर में है, पर सागर और मछली के बीच फासला नहीं है, इतना नैकट्य है, इतनी समीपता है, इसलिए सागर का पता नहीं चलता। ऐसी ही तुम्हारी दशा है अशोक, यहां डूबे हो सागर में, जानना चाहते हो सत्संग क्या है, तो एक ही उपाय है, कुछ दिन के लिए पीठ कर लो मेरी तरफ, भाग जाओ जितने दूर भाग सको, जैसे मछली को कोई निकाल के डाल दे तट पर, भरी धूप में, दोपहरी में, उत्तप्त रेत पर, और तत्क्षण मछली को पता चल जाए कि सागर क्या है। ऐसा ही अबूझ है जीवन, जो चीज मिली होती उसका पता नहीं चलता, जो खो जाती है उसका पता चलता है। आदमी सच में ही बेबूझ है। अब कबीर ने जो अचंभे कहे ऐसे ही नहीं कहे, लोगों को तो लगा कि उलट बांसियां हैं, कि बड़ी उल्टी बातें कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे बड़ी हंसी आती, मछली और सागर में प्यासी है। लेकिन यही हो रहा है, तुम पूछते हो सत्संग क्या है, सत्य ही तुम्हारा जीवन है, सत्य में ही तुम जन्मे हो, सत्य से ही जन्मे हो। वेद के ऋषि कहते हैं अमृतस्य पुत्रः, हे अमृत के पुत्रों। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेत केतु को कहा है तत्वमसि। श्वेत केतु ने पूछा था वह कौन है, वह जिसकी सब खोज करते, वह जिसकी सब तलाश करते हैं, जिज्ञासा करते, वह एक क्या है जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। उद्दालक ने ही कहा था श्वेत केतु को कि खोज उस एक को जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। स्वभावतः श्वेत केतु ने पूछा वह एक क्या है, कहां है, और ऋषि ने कहा अपने बेटे को तत्वमसि, वह तू ही है। इस जगत में हम अपने से अपरिचित क्यों रह जाते, औरों से परिचित हो जाते, अपने से अपरिचित। कारण कारण इतना ही है कि अपने से हमारी कोई दूरी नहीं है। वहां कौन बने जानने वाला और कौन बने ज्ञान का विषय, कौन हो ज्ञाता, कौन हो गे, कौन हो दृष्टा, कौन हो दृश्य, वहां तो दोनों एक है। वहां दृष्टा ही दृश्य है। और इसलिए मुश्किल है। तुम पूछते हो सत्संग क्या है, इस क्षण जो घट रहा है यह सत्संग है। इधर मेरा शून्य तुमसे बोल रहा है, उधर तुम्हारा शून्य मुझे सुन रहा है। बोलना तो बहाना है, इस निमित्त मेरा शून्य तुम्हारे शून्य से मिल रहा है, इस निमित्त तुम्हारा शून्य मेरे शून्य के साथ नाच रहा है, तरंगायित हो रहा है। बोलना तो एक खूंटी है, उस पर मैंने टांग दिया अपने शून्य को, तुमने टांग दिया अपने शून्य को, दो शून्य मिलकर जहां एक हो जाते वहां सत्संग है। और दो शून्य पास आए तो एक हो ही जाते, दो शून्य मिलके दो शून्य नहीं होते, एक शून्य होता है। हजार शून्य मिलके भी एक ही शून्य होगा, हजार नहीं। यहां इतने लोग बैठे, जितने लोग मेरे साथ डूब गए उनकी गिनती गई, उनका आंकड़ा नहीं बचा, उनका नाम धाम पता ठिकाना गया, उतर गया नमक का पुतला सागर में, हो गया सागर के साथ एक। और एक हुए बिना जानने का कोई उपाय नहीं। लेकिन प्रश्न तुम्हारे मन में उठा है इसलिए कि हो तो सागर में मगर अभी भी अपने को बचा रहे हो। छोड़ो बचाना, ये तो मिटने की कला है, ये तो मिटने वालों की जगह है। इसलिए तो कहता हूं ये मंदिर नहीं मैं खाना है, मधुशाला है। पियो और डूबो, ऐसे बेहोश हो जाओ कि फिर कभी होश आए ही ना, और बस वही परम होश है। ऐसे मिटो कि फिर दोबारा बन ना सको, वही मिटना महानिर्वाण है, समाधि है। लेकिन तुम अपने को बचा रहे हो, तुम किसी तरह अपने को छिपा रहे हो। अशोक, तुमने एक प्रश्न और भी पूछा है, उससे जाहिर है कि अड़चन कहां हो रही होगी। उस प्रश्न में तुमने पूछा है कि आप सबके प्रश्नों के उत्तर देते, मेरे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते। तुम्हें न प्रश्नों से प्रयोजन है न उत्तरों से, तुम्हें तो इस बात की फिक्र पड़ी कि मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरे का सवाल है। तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारा नाम मैंने लिया, तुम्हारा रस उसमें, अन्यथा मैं एक का उत्तर नहीं देता हूं। एक के उत्तर माने के प्रश्नों के उत्तर है। मैं वे ही प्रश्न चुनता हूं जो बहुतों के प्रश्न हैं, व्यक्तियों के हिसाब से नहीं चुनता, प्रश्नों के हिसाब से चुनता हूं। ऐसे प्रश्न जो पूछे किसी ने भी हो मगर बहुतों के हृदय में उठ रहे हैं, उनके ही उत्तर देता हूं। किसने पूछा है ये तो गौण है। प्रश्न का महत्व है, लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं, तुम रोज प्रश्न भेजते जाते हो, तुम्हारी आशा एक ही है कि कभी न कभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। क्या उत्तर दूंगा इसकी भी तुम्हें चिंता नहीं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा उससे अहंकार तृप्त होगा। वही अहंकार तुम्हें सत्संग से बचा रहा है, वही तुम अटके हो। उतनी अस्मिता भी काफी है दूरी के लिए, फासला के बनाए रखने के लिए। सत्संग में डूबना है तो क्या मैं क्या तू, सत्संग में डूबना है तो क्या प्रश्न और क्या उत्तर। सत्संग में डूबना है तो तुम्हें एक और ही कला सीखनी होगी, मेरे साथ छंदबद्ध होने की। मेरे हृदय के साथ तुम्हारा हृदय धड़के, मेरी श्वासों के साथ तुम्हारी श्वासें चले। मेरे भीतर जो दिया जला है उस दिए के साथ फिर तुम्हारा दिया भी जल जाएगा। मेरे भीतर जो राग उठा है वह तुम्हारे भीतर भी अनुगुंजित होगा। तुमने सुना होगा कहानियां हैं पुराने संगीतज्ञों की, दीपक राग की, कोई संगीतज्ञ ऐसा गीत गाए कि ऐसी धुन बजाए कि ऐसा राग उठाए कि बुझे दिए जल जाएं। मुझे पता नहीं ये बात संगीतज्ञों के संबंध में सच हो या ना हो, मैं कोई संगीतज्ञ नहीं हूं। सच हो भी सकती है, धुनियों के खास आघात से ताप पैदा हो सकता है, अग्नि जल सकती है। ध्वनियों की चोट से अगर दो पत्थरों की रगड़ से आग पैदा हो सकती है तो दो ध्वनियों की रगड़ से क्यों नहीं, संभावना है। मगर मैं कोई संगीतज्ञ नहीं हूं, इसलिए उस संबंध में मैं कुछ प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकूंगा। मगर मेरे हिसाब में ये कहानी किन्हीं और संगीतज्ञों के संबंध में, ये तानसेन और बैजू बावरा के संबंध में नहीं, यह कहानी बुद्ध के संबंध में, कृष्ण के संबंध में, कबीर के संबंध में, रैदास के संबंध में, फरीद के संबंध में, नानक के संबंध में, मोहम्मद के संबंध में, जीसस के संबंध में, ये परम संगीतज्ञों के संबंध में सही है, एकदम सही है। उस संबंध में मैं गवाही दे सकता हूं, उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, वो मेरी आंखों देखी बात है। और जो मेरी आंखों देखी नहीं वो मैं तुमसे कहता नहीं, बस आंखन देखी ही कहता हूं। ऐसा एक राग है कालातीत मनातीत, ऐसी एक धुन है कि अगर तुम जिसके भीतर वैसा राग जगा है उसके पास बैठने की कला सीख जाओ, अगर उसके पास तुम खुले मन होकर बैठ जाओ बिना किसी सुरक्षा के, सारा कवच सुरक्षा का उतार कर रख दो बिना किसी संदेह के, बिना किसी प्रश्न के, सिर्फ बैठने का आनंद हो, किसी के पास बस बैठने का आनंद, केवल बैठने में ही रस हो, और धीरे धीरे दो व्यक्तियों की सीमाएं एक दूसरे में लीन होने लगे, तो जिसके भीतर राग जगा है उसका राग तुम्हारे भीतर भी राग को जगा देगा। और ये राग ही ज्योति का है, जिसके भीतर ज्योति जगी है, अगर तुम उसके पास सरकते आए सरकते आए सरकते आए तो एक क्षण उसकी ज्योति से लपट उठेगी और तुम्हारा बुझा दिया भी जल जाएगा। इसका नाम सत्संग है। सत्संग वहां है जहां जले दियों के पास बुझे दिए सरकते सरकते एक दिन जल उठते, जहां एक दिए से हजारों दिए जल उठते। जिस दिए से हजारों दिए जलते उस दिए का कुछ खोता नहीं, लेकिन जो जल जाते उन्हें इस जगत की सबसे बड़ी संपदा मिल जाती। सत्संग का एक ही अर्थ है सद्गुरु के पास बैठने की कला। बैठने की कला का अर्थ है अहंकार छोड़ो, अपना नाम पता ठिकाना छोड़ो, अपने मन की शंका कुशंकाएं छोड़ो। बहुत कर लिए ऊहा पोह पाया क्या, बहुत सोचा विचारा कमाया क्या, बहुत दौड़े धापे पहुंचे कहां, अब थोड़े निश्चिंत होकर बैठ जाओ मेरे पास। किसी उत्तर की तलाश में नहीं, कोई गुलाब के फूल के पास बैठता है तो कोई उत्तर की तलाश होती, कोई रात आकाश के तारों को देखता है तो उत्तर की तलाश होती, कोई सुबह उगते सूरज का दर्शन करता है तो कोई उत्तर की तलाश होती। ऐसा ही तो घटता है कभी किसी सद्गुरु में, सारे आकाश के तारे उसमें उतर आते हो जाते, एक आंगन क्या छोड़ा, सारा आकाश अपना हो जाता, सारा आकाश अपना आंगन हो जाता। और जिसके भीतर आत्मा का सूर्य उदय हुआ है, जहां प्रभात हो गई, और जिसके भीतर सुबह के पक्षी गीत गाने लगे, पर फड़फड़ाने लगे, बस उसके पास बैठो, रमो। न कुछ पूछने को है, न कुछ कहने को है, डूबने को है, मिटने को है जरूर, और तब तुम जान लोगे सत्संग क्या है। दूसरा प्रश्न, भगवान आपका धर्म इतना सरल क्यों है? इसी सरलता के कारण वह धर्म जैसा न लगकर उत्सव मालूम होता है और अनेक लोगों को इसी कारण आप धार्मिक नहीं मालूम होते। मैं स्वयं तो अपने से कहता हूं उत्सव मुक्ति है, मुक्ति उत्सव है। मुकेश भारती, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मेरा धर्म सरल है ऐसा नहीं, धर्म ही सरल है। और धर्म मेरा तेरा थोड़ी होता। मेरा धर्म यानी क्या? मेरा प्रकाश यानी क्या? मेरी सुगंध यानी क्या? यह तो वही शाश्वत सुगंध है सनातन। एस धम्मो सनातनो, सदा सदा से जिन्होंने जाना है यही कहा है। भाषा अलग मगर भाव अलग नहीं, शब्द अलग मगर शब्दों का सारा अलग नहीं। यही गीत गाया है, किसी ने वीणा पर गाया होगा और किसी ने बांसुरी से, किसी ने मृदंग बजाई होगी और किसी ने एकतारा। वाद्य अलग अलग, राग नहीं है अलग, सरगम वही है। तो पहली तो बात, मेरा धर्म ऐसी कोई बात नहीं होती। मेरा तेरा को धर्म तक खींच लाओगे? धर्म को तो बचने दो। मेरी दुकान ठीक, मेरा मकान ठीक, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, वहां तक मेरा सार्थक है। मगर कहीं तो एक सीमा आने दो मेरे की, जहां से मेरा और मैं दोनों विदा हो जाएं, उनको अलविदा कहो। कोई जगह तो हो जहां उन्हें छोड़ दो और तुम आगे बढ़ जाओ, जैसे सांप अपनी पुरानी कैचुल को छोड़कर सरक जाता है। ऐसे कोई स्थल तो होना चाहिए जहां तुम मैं और तेरा और मेरा इसकी कैचुल से बाहर सरक जाओ। यह स्थल मैं मेरे से मुक्त होने के लिए है, और वही तो तीर्थ है जहां तुम मैं और मेरे से मुक्त हो जाओ। वही तो धर्म है, धर्म स्वभाव है, इसलिए किसी का नहीं, किसी की बपौती नहीं हो सकती, न हिंदू का, न मुसलमान का, न ईसाई का, न जैन का, न सिख का, न पारसी का। मगर हम ऐसे मूढ़, हम ऐसे अज्ञानी कि जहां मेरा मिट जाना चाहिए वहां भी मेरे के डंडे और मेरे के झंडे उठाए खड़े रहते। इतना ही नहीं, तलवारें चलती, खून खराबा होता है, मंदिर मस्जिद जलते। धर्म के नाम पर इतना पाप हुआ है जितना किसी और नाम पर नहीं। वो धर्म के कारण नहीं हुआ, मेरे तेरे के कारण हुआ है। मैं अमृतसर था, स्वर्ण मंदिर के व्यवस्थापकों ने मुझे निमंत्रित किया तो मैं गया। जो व्यक्ति, 10-15 व्यक्ति, व्यवस्थापक और प्रमुख और जो खास खास मंदिर के लोग थे, मुझे लेके अंदर चले। सीढ़ियों पर ही उन्होंने कहा कि एक बात आपको बता देनी जरूरी है, हमारा यह मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। मैंने उनसे कहा, पूछा किसने? कहने की जरूरत क्यों आई? भेद करते हो इसलिए नहीं भेद करते, इसकी अकड़ है। मैंने कहा, मेरी तरफ देखो, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान? मैं ना तो हिंदू हूं, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध। मैं तो आस्तिक और नास्तिक भी नहीं, मैं तो बस धार्मिक हूं। ये क्या बात कही, और बड़े गौरव से कही। ये भी अहंकार बन गया, इसके पीछे भी मैं खड़ा हो गया। मैं बड़ा चालबाज, हिंदू के पीछे खड़ा हो जाए, मुसलमान के पीछे खड़ा हो जाए, हिंदू मुसलमान की एकता के पीछे खड़ा हो जाए, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम इसके पीछे खड़ा हो जाए। अहंकार इतना चालबाज है कि दिखाई ही नहीं पड़ता कि कब सरक के आ जाता है और कहां से आ जाता है। उसके बड़े सूक्ष्म रास्ते, बड़ी सजग आंखें हों तो ही उससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी क्रियाकांड में मानते नहीं, न हिंदू के न मुसलमान के। नानक ने तो सभी क्रियाकांडों से मुक्त कर दिया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा हो, लेकिन मैंने देखा कि जैसे मैं भीतर चला वो सब परेशान होने लगे। वो मुझसे कुछ कहना चाहते ही मुझे लगे, लेकिन कह नहीं पाते। फिर आखिर उनमें से एक ने मुझे अलग ले जाके कान में फुसफुसाया कि क्षमा करें, आप बिना टोपी के अंदर नहीं जा सकते। मैंने उनसे कहा कि ये टोपी की झंझट तो बड़ी मुश्किल है, इस टोपी के कारण मुझे स्कूल में दिनों बाहर खड़े रहना पड़ा है। आखिर मेरे स्कूल के अध्यापक थक गए मुझे बाहर खड़ा कर करके। आखिर उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए टोपी, अब हम तुमसे टोपी की बात नहीं करेंगे। मैं उनसे कहता कि मुझे इसकी वैज्ञानिकता बता दो। अब टोपी की कोई वैज्ञानिकता है? मेरे जो हेडमास्टर थे वो विज्ञान के एमएससी थे, वो अपना सिर ठोंक लें, वो कहें कि मैं एमएससी हूं, प्रथम श्रेणी का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मगर टोपी की वैज्ञानिकता तुम भी खूब सवाल। मैंने कहा इसके क्या रसायन शास्त्र है, इसका क्या गणित है, टोपी से क्या फायदा होगा, बुद्धि बढ़ेगी कि घटेगी, कुछ इसमें राज हो तो मैं जरूर लगाऊं, एक नहीं दो लगाऊं, दस लगाऊं, टोपी पर टोपी लगा लूं, अगर कोई विज्ञान हो। मैंने कहा ये तो बड़ी झंझट हो जाएगी, लगता है मुझे स्वर्ण मंदिर के भी बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। न मेरे शिक्षक समझा पाए, आखिर उन्होंने मुझसे क्षमा मांग ली कि तुम बिना टोपी से हम ध्यान ही नहीं देंगे कि तुम टोपी लगाए हो कि नहीं, मगर कृपा करके औरों को मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम बिना टोपी के अंदर आओगे तो दूसरे बिना टोपी के अंदर आएंगे। और फिर मैंने उन मित्रों को कहा कि आप तो बड़े बड़े साफे पगड़ बांधे हुए और सरदारों की बुद्धि का क्या हुआ इसका कुछ पता है? इतने कस के बांध लिए खोपड़ी, कि बुद्धि की बिल्कुल क्षमता ही टूट गई। इतना कस के बांधोगे तो आखिर बुद्धि को भी थोड़ा खुलापन चाहिए, हवा आए जाए, खिड़की दरवाजे खुले रहे। और अभी तो वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की, तो मैंने उनसे कहा कि जो बच्चे पैदा होते समय मां के संकीर्ण गर्भ से गुजरते हैं। जिस मार्ग से बच्चों को पैदा होना पड़ता है वो अगर बहुत संकीर्ण हो तो उनकी बुद्धि को नुकसान होता है, उनके मस्तिष्क को नुकसान हो जाता है। अगर मार्ग संकीर्ण ना हो तो उनकी बुद्धि को लाभ होता है, क्योंकि संकीर्ण मार्ग उनके मस्तिष्क को, कोमल मस्तिष्क को बिल्कुल दबा देता है। उन्होंने कहा तो बड़ी मुसीबत हो गई और आपको हम अंदर कैसे ले जाएं, कभी कोई बिना टोपी के नहीं गया, आप इतना तो कम से कम करो, हम पे दया करो, रुमाल बांध लो। मगर कुछ सिर पे हो, सिर पे पूरा आसमान, तुम्हें रुमाल की पड़ी। और अभी तुम मुझसे कहते थे कि यहां कोई क्रियाकांड नहीं, हम सब क्रियाकांड से मुक्त, और ये क्रियाकांड शुरू हो गया। आदमी एक तरफ से बचता है, दूसरी तरफ से पकड़ जाती है बात, क्योंकि आदमी की मौलिक मूढ़ता वही है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। वो अपनी जड़ आत्मों को दोहराए चला जाता है यंत्रवत। चंदूलाल को फिल्मी धुनों का बहुत शौक था, वह हमेशा फिल्मी धुनें ही गाता रहता था, दिन हो या रात उसकी जबान पर फिल्मी धुनें ही रहती थी। एक दिन वह साइकिल पर सवार हो अपने लंगोटे यार डब्बू से मिलने उसके घर जा रहा था। रात का समय था और उसकी साइकिल में रोशनी नहीं थी। साइकिल में रोशनी न देखकर एक यातायात विभाग के पुलिस कर्मचारी ने उसे आवाज दी, ए चंदूलाल के बच्चे रुक। चंदूलाल ने कहा, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो, आवाज ना दो। पुलिस वाला बोला, अबे सुनता क्यों नहीं और साइकिल में रोशनी क्यों नहीं? चंदूलाल बोला, रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। पुलिस वाला तो आग बबूला हो गया, बोले अबे क्या पागल हो गया, यह क्या बकवास लगा रखी। चंदूलाल बोला, मैं परेशान हूं, तुम और परेशान हो, आवाज ना दो मुझको उस रात की तन्हाई में, आवाज ना दो, आवाज ना दो। आंखें बंद जाती, अहंकार एक आदत सदियों सदियों पुरानी, जन्मों जन्मों पुरानी, इसलिए मैं हर चीज पे बैठ जाता है। वो तुम्हारी धुन हो गई, अचेतन हो गई प्रक्रिया। मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरा शास्त्र, नहीं तो कुरान किसी के बाप की, कि वेद के उपनिषद, कम से कम इन्हें तो तुम छोड़ो बपौतियों से। कम से कम मोहम्मद और महावीर के तो ठेकेदार ना बनो, कम से कम इन्हें तो क्षमा करो, इन्हें तो मत घसीटो अपनी क्षुद्रताओं। मगर नहीं, हम तो हर चीज को अपने तल पर खींच लाते हैं, अपनी कीचड़ में गिरा लेते हैं। तो पहली तो बात मुकेश, यह याद रखो, मत कहो आपका धर्म, मेरा इसमें क्या लेना देना है। जो भी जागे हैं सबने यही कहा है, ऐसा ही कहा है। जो भी आगे जागेंगे वो भी यही कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे। इससे अन्यथा कभी नहीं होगा। धर्म तो धर्म है, धर्म का अर्थ है स्वभाव। जिस दिन तुम जाग के अपने को पहचान लेते हो उसी दिन धर्म घटता है। हिंदू घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होते, ईसाई घर में पैदा होने से ईसाई नहीं होते, न हो सकते हो। ये धोखे, जन्म से धर्म का कोई संबंध नहीं। जन्म से वो धर्म मिल जाता तो बड़ी सस्ती बात होती, मुफ्त ही मिल जाता, पैदाइश के साथ ही मिल जाता। धर्म तलाशना होता है, खोजना होता है, अन्वेषण करना होता है, अंतरात्मा में गहरी डुबकी मारनी होती। जब तुम अपने जीवन के केंद्र को अनुभव कर लेते हो, जब तुम अपने भीतर जीवन के मूल को पकड़ लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि धर्म क्या है, और तभी तुम जान पाओगे कि धर्म सरल है। क्योंकि स्वभाव है इसलिए सरल ही हो सकता है, विभाव कठिन होता है। स्वभाव कैसे कठिन होगा? गुलाब खिला है, तुम कहोगे गुलाब की झाड़ी से कि बड़ी कठिनाई होती होगी ऐसे सुंदर गुलाब खिलाने में, और कांटों के बीच कैसे ये गुलाब खिला पाती है झाड़ी, कितनी कठिनाइयों से न गुजरती होगी। कोई कठिनाई नहीं होती, गुलाब की झाड़ी में फूल वैसे ही खिलते सहजता से। जैसे आग जलाती है ऐसे गुलाब की झाड़ी में फूल लगते, जैसे आग की लपटें ऊपर की तरफ जाती हैं और पानी की धार नीचे की तरफ जाती है, सहज स्वाभाविक, वैसा ही धर्म है।
आज के प्रोग्राम में म्यूजिक म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से मिलारेपा और देवा प्रेमल की म्यूजिक एल्बम से लिया गया है। साथ ही ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
तुमसे कह रहा हूं जिंदगी की चुनौतियों से भागना नहीं, जीना है। यही बाजार दुकान काम करते हुए पत्नी बच्चे पति और यही इस ढंग से जीना है जैसे जल में कमल। तो एक अर्थ में मैं जो कह रहा हूं बहुत सरल है और एक अर्थ में जो मैं कह रहा हूं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह तो आसान है कि दुनिया छोड़ के चले गए, न कोई गाली देगा न तुम जवाब दोगे। जवाब किसको दोगे जब कोई गाली ही नहीं देगा? मजा तो तब है जब गालियां बरसती हो और तुम्हारे भीतर गाली न होती। चारों तरफ लोभ का क्रोध का वातावरण हो, उकसावा हो और तुम्हारे भीतर तुम अछूते रहो, कुंवारे रहो। चारों तरफ दुर्गंध भरी हो और तुम फिर भी सुगंधित रहो। मजा तब है जिंदगी को जीने का, पूरा रहस्य तब प्रकट होता है। तो एक अर्थ में तो धर्म सरल है और एक अर्थ में धर्म चुनौती। मैं तो धर्म को निश्चित ही उत्सव मानता हूं। स्वामी कृष्णानंद भारती ने यह गीत भेजा है, उससे मेरी बात साफ होगी। चरण पर चढ़कर जला ले भक्ति की तो आरती, प्रार्थना के गीत झरने दे हृदय से भारती। प्रेम के ये फूल सारे भेंट कर दे चरण पर, रात भर जलती रहो बंतु पिया की आरती। पलकों में ही काट लूंगी राती के प्यार की, आज मधुबन में रचेगी रामकृष्णा भारती। तुम हृदय में बीन छेड़ो झूम कर गाऊं पिया, प्राण में पीयूष भर दो झूम कर पीऊं पिया। कविता की दृष्टि से चाहे यह बहुत महत्वपूर्ण न हो, क्योंकि कृष्णानंद भारती कोई कवि नहीं है, मगर भाव भर दिए, गीत उठा है। तुम हृदय में बीन छेड़ो झूम कर गाऊं पिया, प्राण में पीयूष भर दो झूम कर पीऊं पिया। ये तो प्रीति का मार्ग है धर्म, यह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। आज मंदिर में तुम्हारी मैं स्वयं प्रतिमा बनूंगी, प्रेम के दीपक जलाकर आरती तेरी करूंगी। तुम हृदय के देवता हो, प्राण के सिंगार हो तुम, अश्रु चरणों पर चढ़ाकर नमन में तेरा करूंगी। तुम मिलो जिंदगी छक्कर नहाए गीत गाए, प्यार के माणिक पिया अनुराग उर के पद धरूंगी। मैं बताऊंगी तुझे दिल में जलाकर प्रेम बाती, कल्पना के पंख लेकर अब पिया मैं क्या करूंगी। आस में रो रो कमाई प्यास बढ़ती जा रही है, जिंदगी प्रभु सौंप पद पर वरण में तेरा करूंगी। शून्य मंदिर में पिया प्रतिमा तुम्हारी मैं बनूंगी, प्रेम के सिंदूर से प्री मांग अपनी मैं भरूंगी। यह तो विवाह है परमात्मा से, ये तो सगाई है, ये तो नाचने और मस्त होने का क्षण, जीवन उत्सव है, क्योंकि परमात्मा की भेंट है। जीवन उत्सव है क्योंकि परमात्मा को पाने का अवसर है। जीवन उत्सव है क्योंकि कितना दिया है उसने, कितना दे रहा है रोज। जीवन नृत्य बने, गीत बने, तुम्हारी हृदय तंत्री बजे, झंझनाए, तो ही तुम जानना कि सच्चे धर्म के रास्ते पर सब उदास हो जाए और सब राख हो जाए और फूल मुरझा जाए, तो समझना कि गलत रास्ता ले लिया, तुमने प्रभु की तरफ पीठ कर ली, तुम भाग रहे हो, तुम अवसर गंवा रहे हो, तुम्हें बार बार पैदा होना पड़ेगा। जब तक तुम उत्सव पूर्वक नहीं जियोगे और उत्सव पूर्वक नहीं मरोगे, तुम्हें बार बार लौटना पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने पाठ ही नहीं सीखा। जब तक पाठ न सीख लोगे इस पाठशाला का, तुम्हारा यहाँ वापिस आना अनिवार्य है। जो यहाँ उत्तीर्ण होता है, जो यहाँ जीवन का पाठ सीख कर जाता है, फिर वापिस नहीं लौटता है। और धर्म कला है वापिस न लौटने की। जीवन बहुत प्यारा है, लेकिन जीवन के पार एक महाजीवन भी है जो इससे भी ज्यादा प्यारा, क्योंकि इस जीवन में प्रीति तो है लेकिन अमिश्रित नहीं, गीत तो है लेकिन खंड खंड है, फूल तो खिलते हैं यहां लेकिन कांटे भी लगते, दिन तो है लेकिन रातों के साथ है, जीवन तो है लेकिन मृत्यु की छाया सदा उसका पीछा करती। एक महाजीवन भी है जहां जीवन ही जीवन है और मृत्यु की छाया नहीं, जहां गुलाब के फूल ही फूल खिलते और कांटे जहां असंभव, जहां जीवन है लेकिन जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, उस शाश्वत जीवन का नाम ही मोक्ष या परमात्मा या जो नाम तुम्हें प्रिय हो, निर्वाण, समाधि या कोई भी नाम ना दो, चुप ही रहो, सिर्फ इशारे समझो। इस जीवन से पार जाना है, लेकिन इस जीवन से भाग कर कोई कभी पार नहीं गया। इस जीवन को जो सीढ़ी बनाता है वही पार जाता।
तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का, लिए उल्लास की सांसे समय मस्ती में जीने का, लिए उल्लास की सांसे समय मस्ती में जीने का, तुम्हारे दर्शन की। की